تفسير: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. ذریتم بعدہا من بعد, یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے. اس کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے, جبکہ نجران کی عیسائی جمہوریت کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا تھا. نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان میں ہے. اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 120,000 جو ہے ایسے مرد تھے جو جنگ میں کام کر سکیں, یعنی قابل جنگ مرد اس میں سے نکل سکتے تھے. آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی. اور وہ کون تھے؟ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی, دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا, اور تیسرا اسقف جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے. اسی سلسلے میں نجران کے 3 سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ پہنچے, اور جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا اس وقت کہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں کہ ضمنی بن کر جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی جا سکے. تو اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر جو بات مل رہی ہے اس آیت میں, کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کون تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا, اور اس میں سب سے پہلے ذکر ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ابو البشر جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا, پھر ان سے ام البشر حوا کو پیدا کیا اور جنت میں بسایا, پھر فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا, اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آدم علیہ السلام سے غلطی بھی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے وہ ان کو زمین پر بھیجا, خلیفہ مقرر کیا. تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں, کیونکہ ان کی اصل نسل انسانی تو یہیں سے بڑی اور پھیلی ہے نا. تو ان کا ذکر سب سے پہلے ملتا ہے, پھر ملتا ہے نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا علاقہ دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز تھا. آپ کی قوم بت پرست تھی اور بہت ضدی تھی, ہر دھرم تھی. اتنا لمبا عرصہ 950 سال تبلیغ جب انہوں نے کی تو کہتے ہیں کہ تقریباً 40 کے قریب آدمی جو ہیں وہ یہاں پر ایمان لائے. تو آپ نے دل برداشتہ ہو کر ان کے لیے بدعا کی, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی, ایماندار اس میں سوار ہوئے اور جانوروں کے جوڑے بھی اس میں کشتی میں رکھ دیے گئے. اور جب انہوں نے جو ہے وہ دعوت جب دی تھی نوح علیہ السلام نے, تو لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ انکار کرتے تھے, لوگ جو تھے وہ شرک کرتے تھے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور ان کی قوم جو تھی وہ تباہ ہوئی اور کچھ لوگ جو تھے اس میں سے بچے, تو کہتے ہیں کہ ایسا خطرناک طوفان تھا کہ زیادہ لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں سے بچے. تو پھر اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے آل ابراہیم کا, اور آل ابراہیم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حالانکہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام بھی تھے, حضرت صالح علیہ السلام بھی تھے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو آپ کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی, اور آپ کے والد کا بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آزر جو تھا وہ نمرود بادشاہ جو عراق کا تھا, تو اس زمانے میں اس کی حکومت میں ایک بڑے عہدے پر جو تھا وہ قائم تھا. تو بت बनाता भी था और बुत बेचता भी था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तफसीलात आप पहले भी जो है वो पढ़ चुकी हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक तरफ जो है बनी इसराइल में बहुत से पैगंबर आए और दूसरी तरफ जो है बनी इस्माइल में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी पैगंबर बनकर जो है वो आए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने इनको अपना खलील भी कहा और रहती दुनिया तक इनको अपना इमाम और पेशवा जो है वो मुकर्रर किया। फिर हमें जिक्र मिलता है वह आला इमराना। अच्छा, आला इमराना जो है इसमें अगर आप देखें कि हजरत जो है वो मरियम का जिक्र है और इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम यानी हजरत मरियम की कोख से जन्म लेने वाले जो पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो बिन बाप के पैदा हुए उनका जो है यहाँ पे जिक्र खास तौर पर करना जो है वो मकसूद है। हालांकि कहते हैं कि तारीख में दो इमरान बड़े मशहूर गुजरे हैं, एक मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद और दूसरे जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद। तो उनको भी अल्लाह ने चुन लिया था, उस खानदान को भी और इस खानदान को भी अल्लाह ताला ने जो है वो चुन लिया। और अगर आप जो हैं इस पर जो है वो गौर करें तो हमें जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का अगर आप जमाना देखें तो हमें क्या पता चलता है। देखें यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद फिर लूत अलैहिस्सलाम है, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, फिर याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, शोएब अलैहिस्सलाम है और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, फिर जिलकिफल है, अलियास है, अलियसा है, दाऊद है, सुलेमान है, लुकमान है, उजैर है, यूनस अलैहिस्सलाम, फिर जिक्रिया अलैहिस्सलाम है, याया अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम है। तो बीच में काफी जो है लंबा जमाना है गो के सब जो है वो बनी इसराइल में पैगंबर जो है ये हमें मिलते हैं। तो अब यहाँ पर ये यानी आले इमरान के साथ आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से क्या मुराद है, क्योंकि उस जमाने में जो लोग थे उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत और रिसालत में शक था। तो अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए कुछ ऐसे साबिका अंबिया के नमूने पेश किए ताकि लोगों के शुभात रफा हो जाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम और आले इमरान जो हैं ये सारे भी तो अल्लाह ही ने पैदा किए थे ना। और फिर साथ ही ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का और उनकी वालदा और उनकी नानी का जरा तफसील से जो जिक्र किया तो इसका मकसद क्या था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही एक पैगंबर थे जैसे बाकी सब पैगंबर थे, जैसे उनको चुना था वैसे ही इनको चुना था, तो लोगों ने उनको खुदा क्यों बना डाला या उनकी वालदा को जो है वो खुदा खुदाई में क्यों शरीक कर लिया, अकीदा तसलीस जो है। और बाज लोग कहते हैं कि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमें तफसील से जिक्र जो कुरान में मिलता है और सारे अंबिया से ज्यादा हमें जैसे आम की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर आप छोड़ दें और चंद एक और को तो उनकी निस्बत इनका जो हमें तफसील से मिलता है तो इसकी ये वजह है कि उम्मते मुहम्मदिया को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी जमाना में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलकर काम करना है ताकि उम्मते मुस्लिमा जो है वो उनको पहचान सके उनकी अलामतों से। तो यहाँ पे जो है इन सारे पैगम्बरों का जो जिक्र किया तो अल्लाह ताला कहते हैं सारे ही अल्लाह के चुने हुए थे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बिन बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम तो बिन माँ और बाप के पैदा हुए हैं है ना, और फिर नूह अलैहिस्सलाम भी बुत प्रस्त कौम में बड़ा अरसा उन्होंने जो है वो दावत दी है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या कहने जो जिनकी औलाद में पैगंबरों की एक लड़ी जो है वो चली जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सारों पर इनको जो है मैंने चुन लिया, अल आलमीन दुनिया वालों पर। तो पैगंबर जो है अपनी सूरत, अपनी शक्ल, अपने औसाफ, अपने कमालात, अपने खसाइस, अपनी सब चीजों के लिहाज से आम लोगों की निस्बत जो है वो सबसे आला और मुमताज होता है और उसका किरदार सबसे सुच्चा और अच्छा होता है। और यहाँ पे जो जिक्र किया गया है ये अंबिया चंद एक अंबिया का जिक्र किया गया कि इनको तमाम दुनिया वालों पर जो था वो चुन लिया गया था। तो नबुवत का काम और प्रॉफिटहुड का काम के लोगों को नेकी का हुक्म देना, बदी से मना करना, तो ये है उनके किरदार की सच्चाई। और ये काम अल्लाह को बहुत पसंद है कि ये काम पैगंबरी का काम आगे बढ़ाया जाए कि वो चुने हुए लोग थे तो बाकी लोग भी आगे इस काम को जो है बढ़ाएं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो उम्मत मुस्लिमा को ये काम जो है वो बढ़ाना है। हम आमतौर पर उसको समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत किसी के पास सोना ज्यादा देख लें, चांदी देख लें, घर उसका देख लें, गाड़ी देख लें, हुसन देख लें, मोटी खूबसूरत आंखें देख लें, रंग सफेद देख लें, कुछ भी ऐसी चीज देखकर दुनिया की जो भी रौनकें हैं, हम कहते हैं कि कितनी हसरत होती है कि मुंह खुला का खुला रह जाता है कि कितनी ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ने इसको इतना जो है वो नवाजा है ना। तो असल चीज क्या है कि इस्तफा मुस्तफा, चुने हुए लोगों में से जिनको अल्लाह ने पसंद कर लिया वो है जिन्होंने लोगों को नेकी का हुक्म दिया और बदी से मना किया। ये है अल्लाह का पसंदीदा काम दुनिया के अंदर, लोगों की मदद करना, उनके काम आना, उनको सीधा रास्ता बताना। सीधे रास्ते से भटक जाते हैं जो लोग, उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ तो कोई बात भी है, ये है असल बात। फिर फरमाया जुर्रिया तब दुहा मिन बाद, ये एक दूसरे की औलाद में से थे, कोई खुदा नहीं था, किसी ने खुदाई का दावा नहीं किया, कोई पैगंबर खुदा नहीं हो सकता, एक दूसरे की नस्ल में से थे, ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से जो है वो पैदा हुए। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह जो है वो उस खूब सुनता है और खूब जो है वो जानता है। तो अब आप देखिए कि मसीह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके बारे में ईसाइयों का क्या अकीदा था? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा और रसूल मानने की बजाय अल्लाह का बेटा और उलूहियत में शरीक करार देते थे। तो अब जो है यहां पर अल्लाह ताला उनके इस अकीदे की नफी करते हैं और ये बताते हैं, बात ही इस तरह से शुरू की कि तमाम रसूल थे, तमाम अल्लाह के चुने हुए थे, अल्लाह के खास बंदों में से थे, सब ने एक ही सिलसिले के थे, सब ने दीने इस्लाम और खालिस दीने इस्लाम की दावत दी। और मकसद क्या है कि हर रसूल दूसरे की नस्ल से पैदा हुआ, कोई भी खुदा नहीं था, किसी के बस में ये नहीं था कि उसके अंदर अल्लाह की सिफात होती है, और उनकी खसूसियत ही ये थी कि वो अल्लाह के चुने हुए रसूल थे ताकि वो लोगों को दीन की तबलीग करें और दुनिया की इस्लाह का जो है वो काम करें। और वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता है। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है कि अल्लाह सब कुछ सुनता है और अल्लाह जो है वो सब कुछ जानता है, तो इससे मुराद क्या है? यानी अल्लाह ताला जो है सबकी बातें, सबके हाल जानते हैं। कि किसी भी पैगंबर ने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे खुदा बना लो, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और ना ही जो नेक लोग दुनिया में गुजरते हैं, चले जाते हैं दुनिया से और बाद में लोग उनकी कब्रों को पे मिजार बनाकर उनको पूजना शुरू कर देते हैं, वो भी ये नहीं कहते, लेकिन बाद में लोग जो हैं वो शिर्क और गुनाहों में और बिदतों में मुब्तिला हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जो थे, इन सब के हालात, इनकी बातें, इनके काम को अल्लाह ताला खूब जानने वाले थे। अल्लाह को खूब पता था कि ये इनकी शान नबूवत अल्लाह ने ही दी थी, और इनकी शान नबूवत क्या थी, और उन्होंने नबूवत का काम कैसे किया, और किस तरह दुनिया में नबी की हैसियत से जो है वो काम किया। अल्लाह ने खूब सुना, खूब देखा सारी बातें, और साथ ही इस आयत के हिस्से का अगली आयत से भी ताल्लुक है। और अल्लाह उस वक्त भी सुन रहा था और उस वक्त भी अल्लाह देख रहा था। इस वक्त इस कालत इमरात इमरान रब इन्नी नजर तू लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, फतकब्बल मिन्नी, और वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, बस तू मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा ले। तो अब आप देखें कि इमरान जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारीख में दो इमरान जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, एक मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद, बाज लोग कहते हैं जिन्हें बाइबल में अमराम भी लिखा हुआ है, बाइबल में अमराम है उनका नाम। तो बाज लोग कहते हैं कि ये उन्हीं का जिक्र है, चूंकि उनकी नस्ल में से थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इसलिए यानी गोया के उस खानदान की एक औरत ने कहा। और बाज लोग कहते हैं कि नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नानी थी हजरत मरियम की वालिदा, इनके शोहर का नाम भी इमरान ही था, और इनको जो है वो औलाद नहीं थी इनके यहाँ, और इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना वो औलाद दे, और जब मुझे औलाद होगी तो इन्होंने ये मन्नत मानी थी कि मैं जो हूँ इसको बैतुल मकदस के लिए वक्फ कर दूंगी। और जो इनके शौहर थे कहते हैं कि वो मस्जिद के इमाम थे और हालते हमल में ही उनकी वफात हो गई थी। अभी हजरत मरियम जो थी वो पैदा नहीं हुई थी, तो उनकी वफात हो गई। अगर वो जिंदा होते तो वो ज्यादा मुस्तहिक थे कि अपनी बेटी को लेते और उसकी परवरिश करते, क्योंकि वो लड़की के बाप भी थे और मस्जिद बैतुल मकदस के इमाम भी, और मस्जिद के इसीलिए जो मस्जिद के बैतुल मकदस के जो मजाविर थे, जो इमाम थे, जो आबिद थे, वो हर शख्स ये चाहता था कि वो इनको जो है वो ले ले, इनकी परवरिश करे, हजरत मरियम की, मरियम अलैहिस्सलाम की। तो अब आप देखें कि इनकी वालदा जो थी वो बहुत नेक थी, और उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही हैं। और क्या दुआ कर रही हैं, वो ये कह रही थी कि ऐ मेरे रब, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा। कि बच्चा हो नहीं रहा था, और जब अल्लाह ताला ने जो है वो खुशखबरी दी कि बच्चा अब पैदा होने वाला है, हमल ठहरा, तो इन्होंने मन्नत मान ली कि मैं इसको अब तेरे लिए वक्फ करती हूँ, और शौहर वो जो फौत हो चुका है। और आप सोच लें, एक अकेली औरत जो है उसका जो है वो सोचना, तरबियत करना, पालना पोसना, और इतना बड़ा एक काम जो है वो करना बड़ी बात है। तो लेकिन चूंकि ये नेक औरत थी, और एक ये होता है ना कि पेट के अंदर ही दे दिया, और एक ये कि जब बाहर आता है तो फिर इंसान सोचता है, तो शुरू से ही यानी इब्तदा से ही उनकी नीयत पे बहुत इखलास था कि अल्लाह ताला मैं तेरी जो है इसको नजर करती हूँ, और नजर भी ऐसे करूंगी कि मुहर्ररन वो आजाद होगा, उसको कोई दुनिया का और काम जो है वो नहीं होगा, कमाने का, पालने पोसने का, और जो भी दुनिया के काम है, बल्कि उसका काम ये होगा कि बैतुल मकदस की खिदमत करे। और हजरत मरियम की वालदा को जो भी उनके पेट में बच्चा था, उनको बड़ी उसके उससे बड़ी जैसे उम्मीदें वाबस्ता थी, और उनके जहन में था कि जो है शायद मेरे बेटा पैदा होगा, तो साथ ही कहा कि फतकब्बल मिन्नी, तो उसको कबूल कर ले। अभी हुआ नहीं पैदा, और कह रही है कि अल्लाह ताला मैंने जो मन्नत मानी है तो इसको कबूल कर लेना, मेरी उस औलाद को कबूल कर लेना। तो आप सोच लें कि औरतों का किरदार कितना अहम है। हमल ठहरता है तो सबसे पहले यानी औरत को अंदाजा होता है कि हमल ठहर रहा है, तबीयत में जो तब्दीली और चेंज आती है, तो हमल से पहले भी दुआएं करना नेक औलाद की, और वो ताल्लुक कायम करते वक्त भी दुआ करना, और जब वो बच्चा आ जाए फिर भी उसकी नेकी की दुआ करना, है ना, और सोचना कि कैसे उसके जरिए जो है वो जन्नत कमाई जा सकती है, किस तरह अल्लाह के दीन की खिदमत में उसको मसरूफ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इस बात की फिक्र करना कि मैं तो ये चाह रही हूं, पता नहीं मेरा रब उसको कबूल भी करेगा कि नहीं। फतकब्बल मिन्नी, क्या मेरे रब तो उसको कबूल कर लेना। इन्नक अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने और जानने वाला है, यानी तू बंदों की दुआएं सुनता है, तुझे बंदों की नीयतों का पता है कि वो उनकी नीयत क्या है और वो क्या जो है वो चाहते हैं। तो अब आप देखें कि वाकई अल्लाह ताला सारी सबकी बातें जो है वो सुनता है और जानता भी है ना। और हम भी बहुत सी दुआएं करते हैं, बहुत सी मन्नतें भी मानते हैं कि ये मिल जाएगा तो ये करेंगे, पैसे मिलेंगे तो खैरात करेंगे, मदद करेंगे। जब पैसे मिलते हैं फिर सोचते हैं कि खर्च करें कि ना करें, दें कि ना दें। मेरी नीयत तो थी लेकिन ऐसे नहीं थी, मैंने सोचा तो था लेकिन, फिर लेकिन बीच में आते सारी जिंदगी और जवानी जो है वो गुजर जाती है। लेकिन उनको ये फिक्र थी कि अल्लाह कबूल भी कर ले, और साथ साथ वो अल्लाह को गवाह बनाती जाती थी कि तू सुनता भी है और तू जानता है ना कि जो कुछ है मेरे पास, और तू सुन रहा है कि मैं क्या दुआ कर रही हूँ, मैं क्या नजर मान रही हूँ। फलम्मा वदा था قالت رب اني وضعتها انثى, फिर जो बच्ची इसके यहां पैदा हुई तो इसने कहा मालिक मेरे यहां तो लड़की पैदा हो गई है। वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी। वलैस الذكر كالأنثى, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। अब आप देखें कि हजरत मरियम की वालदा ने जो मन्नत मानी थी, उनको ये तवक्को थी कि बेटा पैदा होगा, और उस जमाने में बेटे ही इबादत के लिए वक्फ किए जाते थे, लड़कियों को वक्फ करने का रवाज नहीं था। मगर हुआ ये कि जब लड़के की बजाय लड़की पैदा हुई तो इन्हें इस बात पर अफसोस हुआ, उन्हें इस बात पर जो है वो गम लगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा था मुहर्ररन आजाद होगा, और उसके मानी क्या थे कि कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं होगी। और अगर लड़की की बात है तो आप खुद ही ये देख लें कि लड़की जो है उसके ऊपर कई معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کئی فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، جیسے کچھ دنوں میں جو مینسز ہوتے ہیں، حیض ہوتے ہیں، پھر یا بچے کی ولادت ہے، اور طبیعت کی خرابی، اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے. یعنی لڑکی کے ساتھ کئی فطری اور تمدنی پابندیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور لڑکا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس مقصد کو زیادہ اچھی طرح ادا کر سکتے تھا. تو اس لیے انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بچے کو تیری راہ میں جو ہے وہ میں نظر کرنا چاہتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا بات کہی کہ اللہ کو ایک تو اس وقت بھی اس کا پتا تھا کہ پیٹ میں ہے کیا، واللہ اعلم بما ودات، یعنی اس کو تو جب پیدا ہوا تو پتا چلا نا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، حیران ہو گئی. اللہ کو تو تب بھی پتا تھا جب تشکیل کے مراحل میں سے وہ حمل گزر رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ ولیس الذکر کالانثیٰ، تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جو ہے ان کی والدہ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یعنی لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے بدرجہ بہتر ہے، افضل ہے. کیا تسلی دی؟ کہ ولیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی تم کہہ رہی ہو کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو لڑکی جو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ لڑکے کی طرح نہیں ہے. یعنی جیسے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا نا، ڈفرینٹ ہے نا اس سے، تو گویا کہ جو کچھ وہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے لڑکی کی حیثیت سے زیادہ اچھا اس سے اس کی بیٹی سے کام لے سکتے ہیں، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، گویا کہ لڑکی جو اس نے جنم دی ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ لڑکی لڑکے سے بدرجہ افضل ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کی جوڑ کا نہیں، لہٰذا افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا زیادہ اچھا یہ کام کر سکتا ہے، یا فلاں میرا بچہ، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ رہے وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے. بعض اوقات ہم کسی سے کوئی امید رکھ لیتے ہیں کہ فلاں رشتے دار، فلاں دوست، فلاں ہمسایا میرا یہ کام کر دے گا، جس سے امید نہیں ہوتی وہ زیادہ اچھے طریقے سے آ کے کر دیتا ہے نا. تو یہاں پر جو ہے یہ تسلی ان کو دی گئی کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی اگر تم نے لڑکی جنم دے دی ہے تو زیادہ افضل ہے، اللہ کو تو خوب پتا ہے کہ کیا جنم دیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے آگے جو ہے جو بات پتا چلتی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہمیں ملتا ہے حنہ بنت فاقوس. حنہ، ہا نون اس کے ساتھ ہا ملا دیں، حنہ بنت فاقوس. کہ ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھ دیا ہے. اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے، پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ عورت اپنی بچوں کا نام رکھ سکتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ عورت کو جو حقوق دینے ہیں اور جو اس کو ماننا ہے اس میں کافی کمی ہے. تو کیا بات پتا چلتی ہے کہ عورت بھی اس لائق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام رکھے، کہ وہ کہہ رہی ہے خود ہی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھ دیا ہے. دوسری ہمیں بات کیا پتا چلتی ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، ہے نا، نام جو ہے اس کو اچھا رکھنا چاہیے. کیوں اچھا رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ نام کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام، یعنی ہمیں نام رکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب بھی ہم نام رکھیں تو شروع میں عبد، جو اللہ کے نام رکھے، عبد اور عمد لگانا چاہیے، یا پھر کسی پیغمبر کے نام پر رکھے، یا پھر کسی مجاہد، ولی یا خادم دین کے نام پہ رکھے. تو مطلب ہمیں اچھے نام جو ہے وہ رکھنے چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھا نام رکھنے کی ہدایت کی اور اس کی حکمت بتائی تو آپ نے کیا فرمایا، انکم تدعون یوم القیامتی باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، تم لوگ قیامت کے روز اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھا کرو. और वैसे भी बाज नाम ऐसे होते हैं मोहमल से होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, बेमानी से होते हैं। जैसे एक नाम तुरजाऊन किसी ने रखा हुआ था, अरबी नाम था तुरजाऊन, कि तुम लुटाई जाओगी। आमना की क्लास पहले थी अमेरिका में मुस्लिम स्कूल में, बच्ची तुरजाऊन, अब बेचारों को पता ही नहीं कि तुरजाऊन क्या है, तुम लुटाई जाओगी। अब कोई नाम रख लेता है ला रहे, कोई शक ही नहीं है ना। अब इसमें क्या शक, वो बच्चा तो आ गया, लड़की है कि लड़का, अब शक नहीं है, ये क्या हुआ नाम। फिर इस नाम महीस है से महीस है, ये किसी ने नाम वगैरह रख लिया, और फिर लोग कहते हैं कुरानी नाम रखा है ना, कुरानी नाम रखा है। तो नाम रखें, सोच के रखें, बमानी रखें, अच्छे सहाबा साहबियात पैगंबरों के नामों पर, अल्लाह के नामों पर, ताकि, और बच्चों को उनकी स्टोरीज कहानियां सुनाएं, ताकि उनके किरदार में भी पुख्तगी और मजबूती जो है वो पैदा हो। अच्छा, बाद आसिया, एक तो बीबी आसिया वो नहीं, आयन अलिफ आ स्वाद या गुनागार, ये नाम भी जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अहदीस से क्या पता चलता है कि जब आपने देखा कि किसी ने आसिया नाम रखा हुआ है, तो आपने कहा कि खुद ब खुद अपने आप को गुनाहगार कहना ये पसंदीदा नहीं है, आपने उसका नाम बदल कर जमीला रख दिया। इसी तरह जो है वो हर्ब, जंग को कहते हैं, बाज लोग हरब नाम रखा किसी ने, हरब। अब जंग कोई पसंदीदा काम तो नहीं है ना, इसी तरह किसी ने मुर्रा नाम रखा, मुर्रा ये कड़वी चीज को कहते हैं, अब कड़वी चीज भी बहरहाल ना पसंदीदा है। अब यानी मुर्रा मुर्रा, यानी कड़वी चीज इधर आओ, कड़वी चीज इधर आओ, है ना। तो ये क्या बात हुई। तो असल इसका फिर क्या मतलब हमें पता चलता है कि हमें अंदाजा होना चाहिए कि अच्छे नाम क्या है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पसंदीदा नाम है हरब और मुर्रा, हरब यानी जंग और मुर्रा कड़वा, तो सच कड़वा होता है वैसे, है ना। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमें और भी पता चलता है कि एक दफा जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंटनी धोने के लिए लोगों से पूछा, इस ऊंटनी को कौन धोएगा। एक शख्स उठ खड़ा हुआ, आपने से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम है मुर्रा। आपने फरमाया बैठो। फिर आपने पूछा इस ऊंटनी को कौन धोएगा, एक शख्स उठ खड़ा हुआ, आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या, इसने कहा मेरा नाम है हर्ब। आपने फरमाया बैठ जाओ। फिर आपने पूछा इस ऊंटनी को कौन धोएगा, एक शख्स उठ खड़ा हुआ, आपने इसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम है यईश। आपने फरमाया अच्छा धो लो। तो यानी यईश जो है उसमें जिंदा रहना, ईशतिर दिया इससे है। तो इसी तरह एक हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी नकल की है कि रसूल अल्लाह ने लोगों से पूछा हमारे इस ऊंट को कौन हांग कर ले जाएगा, या ये फरमाया कि कौन इसको पहुंचाएगा। एक आदमी ने कहा कि मैं। आपने इसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम ये है। कोई नाम बताया जो आपको पसंद नहीं था। इसी तरह जो है फिर आपने जो है वो उसको कहा बैठ जाओ। फिर दूसरा शख्स उसी मकसद के लिए खड़ा हुआ, आपने उससे ही पूछा तुम्हारा नाम क्या, उसने भी कहा मेरा नाम ये, आपने उससे भी कहा बैठ जाओ। फिर तीसरा शख्स जो है उससे वो खड़ा हुआ, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, उसने बताया मेरा नाम नाजिया है। आपने फरमाया अच्छा तुम इस काम के लिए मौजू हो, इसको हांग कर ले जाओ। तो यानी दो नाम आपको जो है वो बिल्कुल पसंद ही ना आए। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि हमें अच्छे नाम रखने चाहिए। अगर किसी के अच्छा नाम ना रखा हुआ हो, उसके गलत मानी निकलते हो, तो उन नामों को तब्दील कर देना चाहिए। मैंने एकदम सोदान, जहन्नुम में एक झाड़ी है जिसके कांट जिसके अंदर कांटे हैं, और जब लोग पुल सिराज से गुजरेंगे तो उसको वो खींच लेंगे ना, तो जैसे बाद लोग वो भी नाम रखते हैं। तो बहरहाल गौर करना चाहिए कि हम क्या नाम जो है वो रखते हैं। अच्छे नाम बच्चों को देने चाहिए, और सबसे पहला तोहफा जो वालदैन बच्चों को देते हैं, अजान उनके कानों में, दाएं कान में अजान, बाएं में अकामत, और उसके साथ ही अच्छा नाम रखना। और जरूरी नहीं कि 7वें दिन का इंतजार किया जाए, पैदा होते भी नाम रखा जाए, तो ये भी रसूल अल्लाह की सुन्नत से हमें पता चलता है। तो उन्होंने वह इन्नी समय तुहा मरियम, मरियम ना रखा, और हमें अपने नाम के मानी भी आने चाहिए, है ना, जानना चाहिए। और साथ ही उन्होंने क्या दुआ की, वह इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिन शैतानिर रजीम। उन्होंने कहा कि मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मर्दूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, इसकी पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है, तो वह चिल्लाकर रोने लगता है, सवाए हजरत मरियम और इसके बेटे حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ شیطان نے انہیں نہیں چھوا، یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا پڑھی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا کہ حضرت مریم اور ان کی اولاد جو ہے وہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہی اور شیطان اس کو چھو بھی نہ سکا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے. اچھا ایک اور بات جو ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یعنی جیسے اب بیٹی پیدا ہو تو اس پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے. بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہونا اور غم منانا اور سوگ کسی کیفیت اور پریشان ہونا، اس زمانے میں بھی تھا اتنا عرصہ پہلے کہ ان کی والدہ پریشان ہو گئی کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور آج جب کہ ترقی کا زمانہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جدید دور ہے اور بہت ترقی ہے اور عورتوں کو حقوق دے دیے گئے ہیں، تو آج کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اور منہ سا بنا لیتے ہیں. تو اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بیٹا ہوتا ہے تو عورت کا کیا کمال ہے. اس میں عورت کا تو کوئی کمال نہیں نا، اللہ تعالیٰ اس بیٹا بنا دیتا ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو بیٹی جو ہے وہ دے دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار مختلف طریقے سے یہ بات کہتے ہیں کہ مطلب یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو چاہے اور جو چاہے جو ہے نا وہ عطا کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر بات پر قادر ہے. یہ سورت شورا جو ہے اس کی آیت ہے آیت نمبر 49 اور 50، کہ اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، چاہے تو بیٹے دے چاہے تو بیٹیاں، چاہے ملا کے دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے. اچھا پھر اسی طرح زمانہ جاہلیت کی یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے سورت نحل کی آیت 58 اور 59، کہ اور جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ خون کا سا گھون پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس برائی کو لے کر جس کی اسے خبر دی گئی ہے، کسی کو منہ دکھائے، کس کو منہ دکھائے، کسی کو کیسے منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اس شرم اور ذلت سے نجات پانے کے لیے اس کو مٹی میں دفنا دے، دبا دے. اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ جب بیٹی نہیں چاہتے تو کیا کرتے ہیں کہ ضائع کروا دیتے ہیں، ہے نا. تو اچھا اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے، آپ کا کیا معاملہ تھا، اور آپ جو تھے وہ آپ نے لڑکیوں کے بارے میں جو ہمیں احادیث بتائیں اور لڑکیوں کی جو حقوق اور ان کو پالنے کا جو اجر بتایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آزماتا ہے اور لڑکیوں کے ذریعے سے ان کو نوازتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اس کو میسر آئی ہے، رحمت ہے جو لڑکی کی شکل میں اس کو جو ہے وہ اس کے نصیب میں آئی ہے. کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، میں خود لڑکیوں کا باپ ہوں. لا تکرہ البناتی فإنی ابو البنات. اور آپ نے فرمایا بیٹیاں بڑی محبت والی اور بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی بیٹیاں عطا کی تھی، چار لڑکیاں، چار بیٹیاں جو تھی وہ عطا کی تھی. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی ہوتی ہے تو اللہ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں السلام علیکم. فرشتے پیدا ہونے والی لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک ناتوان کمزور جان ہے جو ایک ناتوان اور کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتوان جان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جو کئی بچوں کا باپ تھا. اس نے کہا کاش یہ سب بچیاں مر جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو غصہ آ گیا اور اس شخص سے بولے کیا تم ان کو روزی دیتے ہو؟ تو لڑکیوں کی پیدائش پر रोना धोना, मातम करना, सोग मनाना, या उसको ताने देना, यानी उस औरत को कोई ताने दे, तो ये जहालत की बातें हैं। और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को जो है ये बहुत सख्त नापसंद है। और आज भी मुहज्जब घरानों में, पढ़े लिखे घरानों में जो है वो लड़कियों की पैदाइश पर जो है ये रोना धोना किया जाता है, और लड़की और लड़के की परवरिश में और तरबियत में इम्तियाज बरता जाता है। ये लड़की है तो उसकी तालीम और तरबियत, उसको खिलाना पिलाना डिफरेंट अंदाज में होता है, और ये लड़का है तो उसकी तरबियत और उसको खिलाना पिलाना, उसकी परवरिश, ये तो लड़का है ना, उसको खूब जो है ना उसको खराब किया जाता है, उसकी तरबियत पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये तो लड़का है और ये तो लड़की है, इसने कहीं और जाना है तो उसकी खूब जो है यानी यूं समझ ले खाल उधेड़ी जाती है। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों की तालीम और तरबियत करनी चाहिए। लड़के को बाप बनना है और लड़की को माँ बनना है ना? तो इसकी भी पूछ है कि लड़के की तरबियत पर तवज्जो ही ना दी जाए। लड़का है या लड़की, अल्लाह जानता है कि हमारे लिए जहन्नुम में से कौन आड़ बनेगा और हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया जो है वो कौन बनेगा। तो औलाद की जो परवरिश की जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पालने पोसने की बात हो या फिर उनके उन पर खर्च करने की बात हो या उनकी तालीम और तरबियत की बात हो, दोनों में कोई फर्क जो है वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें ये बात भी पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जो खातून अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर में बैठी रही वो जन्नत में मेरे साथ होगी। है ना? कि मतलब बच्चों की तरबियत की के लिए वो इतनी ज्यादा वो कोशिश करती है कि आपने कहा कि वो जन्नत में जो है वो मेरे साथ होगी। फिर हमें जो है वो ये बात भी पता चलती है लड़कियों की तरबियत के लिए कि आपने जब किसी के यहाँ जो है वो, जब आपने ये बात कही थी कि अगर किसी के पास तीन बेटियां हो और वो उनकी अच्छी तरबियत करे तो उसको क्या मिलेगा, जन्नत। तो सहाबी ने क्या पूछा था, अगर दो हो तो? हाँ, तो आपने उसके लिए भी ये कहा। फिर वो सहाबी कहते हैं कि हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश हम एक के लिए भी यही बात पूछ लेते, है ना? तो यानी दो बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं और एक बेटी है, उनकी अच्छी अगर तरबियत की जाएगी तो आप सोचिए कि जन्नत है घर में, यानी उनकी वजह से जन्नत मिलेगी। और ये कमजोर जान है, और दूसरी तरफ जो है इंसान जो है वो इनको सोचे कि ये मुसीबत है और ये क्या करेंगे, तो ये बड़ी जो है वो अजीब बात है। इस सिलसिले में मुझे एक बात बहुत अहम लगती है और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें जो बात पता चलती है और वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा एक सहाबी ने एक वाकया सुनाया था। और क्या कहा था उन्होंने कि या रसूलल्लाह, हम लोग ना वाकिफ थे, हमें कुछ खबर ना थी, पत्थर के बुतों को पूजते और अपनी प्यारी औलाद को खुद अपने ही हाथों मौत के घाट उतार देते। या रसूलल्लाह, मेरी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, मैं जब भी उसको बुलाता वो दौड़कर मेरे पास आ जाती। एक दिन मैंने उसको अपने पास बुलाया, वो खुश खुश दौड़ती भी चली आई, मैं उसको अपने साथ लेकर चला, मैं आगे आगे था और वो मेरे पीछे दौड़ती चली आ रही थी। मेरे घर से कुछ ही फासले पर एक गहरा कुआं था, जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो रुक गया, लड़की भी मेरे करीब आ गई। फिर या रसूल अल्लाह, मैंने इस बच्ची का हाथ पकड़ा और उठाकर इस कुएं में डाल दिया। एक जगह मिलता है कि जब मैं कुआं खोद रहा था ना, मेरी दाढ़ी पर मट्टी गिर रही थी और मेरी वो बच्ची मेरी दाढ़ी से मट्टी उतार रही थी, कि मेरे बाप की दाढ़ी पर मट्टी जो है ना वो गिर रही है, तो मट्टी उतार रही थी। तो मुख्तलिफ मिलती है ना, कहीं तफसीली हदीस है, कहीं मुख्तसर है। तो यहाँ पर ये है कि कुएं में उसको डाल दिया, मासूम बच्ची कुएं में से चीखती रही और बड़ी दर्द भरी आवाज से मुझे अब्बा अब्बा कहकर पुकारती रही। या रसूलल्लाह, ये इसकी जिंदगी की आखिरी आवाज थी। वो सहाबी ना रो रहे थे और बार बार जो है वो रो रहे थे, और क्यों रो रहे थे, कहते थे कि उसकी चीखें मुझे ना, मेरे सांस नहीं लेने देती अब सुकून का, ना उसकी चीखें मुझे मेरा पीछा करती हैं। जैसे होता है ना कि कातिल अपने खून का खुद ही एतराफ कर लेता है कि खून उसको बैठने नहीं देता, तो बच्ची की चीखें जो है ना उनका पीछा करती थी। तो और वो रो भी रहे थे ना साथ साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये दर्द भरी कहानी सुनी तो आप रोने लगे। एक सहाबी ने उनको बुरा भला कहा, कहा कि तुमने खामखा ये अजीब दर्दनाक कहानी सुनाकर रसूलुल्लाह को दुखी कर दिया। रसूलुल्लाह ने सुना तो फरमाया, नहीं, इससे कुछ ना कहो, इनसे कुछ ना कहो, इस पर बड़ी मुसीबत पड़ी, ये इसका इलाज पूछने आए हैं। फिर इनकी तरह मुखातिब होकर फरमाया, हाँ मियाँ, एक बार फिर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। उस सहाबी ने दोबारा अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। रसूल अल्लाह का अजीब हाल था, रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई, फिर इनसे कहा तुम इस्लाम ले आए हो, इसकी बरकत से जमाना जाहिलियत के सारे गुनाह माफ हो गए, जाओ और अच्छे काम करो। तो हमें सोचना चाहिए कि बेगुनाह, बेबस और मजलूम लड़कियां और बेटियां जो हमारे घरों में हैं, तो हमें उनके साथ जो है वो कितना और कैसे जो है वो हुस्ने सुलूक करना चाहिए। और हमें जैसे उनकी वालदा ने ये दुआ की थी, हमें और भी बहुत सी ऐसी दुआएं मिलती हैं कि रब्बाना हब लना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, मुख्तलिफ दुआएं जो है वो पढ़ते रहने चाहिए। और इमरान की बीवी ने जो दुआ मांगी वो तो बेटा मांग रही थी, लेकिन बेटी उनके लिए बायसे सआदत बनी, बेटी की वजह से अल्लाह ने उनके खानदान को जो है वो चुन लिया। तो असल बात यह है कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए बेटी में बेहतरी है या कि बेटे में जो है वो बेहतरी है। तो इससे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चियां जो हैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करें और बच्चों के साथ भी करें, और जो भी अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे हम अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाएं, हम जो है वो परेशान न हुआ करें। और खास तौर पर जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए वो ये है कि हमारी औलाद जो है वो शैतान मर्दूद से महफूज रहे, और सिर्फ अपनी औलाद नहीं, औलादों की औलाद। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन, फिर अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छी तरह कबूल कर लिया। क्यों ना अल्लाह कबूल करता जब उनकी नीयत में इतना इखलास था। तो अमलों का दारो मदार तो नीयतों पर है। जब कोई भी इंसान काम करता है और उस नीयत में इखलास होता है तो अल्लाह उसको बड़ी पजीराई देता है, अल्लाह उसको बड़ी कबूलियत का आला दर्जा जो है वो अता करता है। तो कैसे अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया कि अम्बतहा नबातन हसनन, कि उसको खूब बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया। यानी अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी रूहानी तरबियत खूब अच्छी तरह की। जब वो सने शऊर को पहुंच गई तो वो क्या था कि अब ये था कि इनके इनका कफील और इनका निगरान कौन हो। और कहते हैं कि जब वो बेटी इनके यहां पैदा हो गई तो उस वक्त उसी वक्त इनकी वालदा इनको लेकर जो थी ना वो चली गई बैतल मकदस, के मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह की नजर कर दूंगी। और फिर कहते हैं कि वहां उन लोगों ने एक अन्ना रखी, एक नौकर रखा, यानी दूध भी पिलाया और उनके लिए घर भी बनाया और उनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम जो था। तो अल्लाह ताला ने क्योंकि उसको कबूल कर लिया था तो उसके लिए उसको बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठा उठाकर खड़ा किया। वह कफ्फा लहा जकरिया, और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को इसका सरपरस्त जो है वो बना दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत मरियम के क्या थे, खालू थे, यानी उनको इनका सरपरस्त जो है वो बना दिया। उल्लमा दखला अलैहा, जब कभी जकरिया अलैहिस्सलाम इनके पास आते तो जकरियल मेहराब, यानी मेहराब में उस इबादत खाने में जहां पे वो इबादत कर रही होती थी, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो इनके पास जो था इनको रिज्क नजर आता, खाने पीने का सामान नजर आता। कुल क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाजा, पूछते हैं मरियम ये तेरे पास कहां से आया, हैरत ज़दा हो जाते, क्या मरियम ये तेरे पास कहां से आ गया। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो जवाब देती कि ये तो अल्लाह के पास से जो है वो आया है। यानी खाने पीने की चीजें या वो जो बातें करती वो ऐसी हिकमत पर मबनी होती और उनका इल्म जो था वो ऐसा मार्फत पर मबनी होता कि वो हैरत ज़दा होते कि ये कैसी बातें जो है मरियम करती है, या ये अजीबो गरीब जो खाने पीने की चीजें नजर आती तो पूछते कि ये चीजें जो है तेरे पास कहाँ से आई। कि ऐसी चीजें जो उनको नजर आता था कि आम तौर पे मिलती नहीं, कि देखकर अशश कर उठते और फिर तमन्ना कि मुझे भी ये चीजें मिले। और हजरत खुबैब बिन अदी अंसारी साहबी के बारे में आता है कि जिन्हें मक्का में काफरों ने शहीद कर दिया था और जिनके कैद के जमाने में खजूर के गुच्छे मिला करते थे जबकि वो कैद में काफरों ने बंद करके रखा था। ये बुखारी की रवायत है, गैब से अल्लाह ताला उनके लिए उसका इंतजाम करते थे। तो यहां पर भी जो बात पता चलती है वो क्या है कि अल्लाह ने उनकी कफालत का खास तौर पर जो है वो इंतजाम किया हुआ था। और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम चूंकि उनकी कफालत करते थे, बाज़ औक़ात वो खुराक लेकर आते खुद के कमरे में बंद है, अकेली है तो इसको खाना दिया जाए, तो जब वो पहुंचते तो पहले से खाने पीने का इंतजाम और चीजें पड़ी होती, तो फिर हैरान होते कि यहाँ तो मेरे सिवा और कोई आ नहीं सकता, निगरान तो मैं हूँ, कफील तो मैं हूँ, तो ये चीजें इसके पास जो है वो कहाँ से आई, कौन दे जाता है। तो कहती अल्लाह ताला ने दी है, मुझे भी नहीं पता, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हुआ है। तो अब आप देखें कि उस मौके पर जो जब उन्होंने ये सुना, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हालात देखे, तो जो है उन्होंने उस वक्त क्या किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना, एक तो हुआ मिन इंदिल्ला, दूसरा क्या इन अल्लाह यरजुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, ये इनकी बात भी हो सकती है और आम भी, कि अल्लाह जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे, बगैर किसी भी हिसाब किताब के अल्लाह ताला जो है वो उसको रिज्क अता करे। यानी ये इसमें ये नहीं है कि उनकी कोई, क्योंकि अभी तो छोटी सी थी, उनकी इबादत का कमाल नहीं था, उनकी रियाजत का कमाल नहीं था, बल्कि क्या है कि ये तो छोटी सी हैं और अल्लाह ताला ने उनको ये सब कुछ जो अता किया। तो कहते हैं कि ये बाज लोग कहते हैं ये हजरत मरियम के बात का हिस्सा है, और बाज लोग कहते हैं कि ये उनकी बात का हिस्सा नहीं है, ये खुद अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में तारीफ के तौर पर कहा है कि ये मेरा फजल है, जिसको दूं जैसे दूं जितना चाहो दूं बगैर हिसाब के। फिर क्या फरमाया कि उस वक्त जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने ये हालात देखे, हुनालिका उसी वक्त उसी जगह, दा जकरिया रब्बा, उन्होंने अपने रब से दुआ की, और उन्होंने दुआ जो है वो की तो क्या की, قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء। तो उन्होंने कहा, यह हाल देखकर अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ जो है वो सुनने वाला है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उस वक्त जो थे वो बे औलाद थे, और बे औलाद थे, और जब उन्होंने हजरत मरियम जैसी नेक औलाद देखी और उनके पास बिन मौसम का फल देखा, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी अल्लाह ताला चाहे तो औलाद जो है वो दे सकता है, क्योंकि उस वक्त वो खुद बूढ़े हो चुके थे और बीवी जो थी वो बांझ थी, औलाद की कोई तवक्को नहीं थी, जाहिरी कोई असबाब नहीं थे, मगर औलाद की ख्वाहिश जरूर थी। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जब ये जवाब सुना ना, हुआ मिन इंदिल्ला, तो उनके दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ और ये ख्याल आया कि मैं भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, और उन्होंने दुआ मांगनी शुरू की, और हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि अल्लाह मेरी दुआ को भी इसी तरह शर्फ़े कबूलियत बख्श दे जैसे कि हजरत मरियम की दुआ को जो है वो बख्शा है, या हजरत मरियम की वालदा को जो है शर्फ़े कबूलियत जो है वो बख्शा है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, एक बात तो ये कि दुआएं मांगनी चाहिए है ना, और दूसरी बात जो है वो क्या है कि औलाद के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए, औलाद आंखों की ठंडक बने, अच्छी औलाद हो। और एक हदीस में आता है रसूल अल्लाह ने हजरत उम्मे सुलैम के लिए ये दुआ की, उन्होंने हजरत अंस को लाई प्यार रसूल के पास रजी अल्लाह अन्हु, और कहने लगी कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें ना, तो आपने उस वक्त दुआ की कि अल्लाहुम्मा अक्सिर मा लहू व वलदहू व बारिक लहू फी मा आतैता, कि अल्लाह इस अंस के माल और औलाद को ज्यादा कर और इस चीज में बरकत अता कर जो आपने इसको अता की है। कहते हैं इस दुआ का असर था कि हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु की औलाद 100 के करीब हुई और अल्लाह ताला ने माली वुसअत भी अता की और इनकी उम्र भी काफी लंबी हुई। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि औलाद की, अच्छी औलाद की दुआ जो मांगनी है तो फिर निकाह भी तो जरूरी है ना, अन निकाह मिन सुन्नती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये भी कहा कि फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये भी आपने फरमाया तजव्वजुल वदूदल मौलूदा, तजव्वुजुल वदूदल वलूदा फइन्नी मुकासिर बिकुमुल उमम, कि तुम खावन से दोस्ती रखने वाली और बहुत जलने वाली औरतों से निकाह करो, क्योंकि तुम्हारी कसरत की वजह से मैं दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। यानी निकाह भी रसूल अल्लाह की सुन्नत है और औलाद भी। कुछ लोग कहते हैं निकाह ही नहीं करना, और कुछ लोग कहते हैं कि औलाद नहीं चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बस फिर दो बच्चे खुशहाल घराना। तो इन सब बातों पे हमें क्या बात समझ आती है कि हमें औलाद की और नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात यह समझ आती है कि जब किसी के पास कोई अच्छी चीज देखे तो हसद नहीं करना चाहिए, रश्क करना चाहिए। उन्होंने जब देखा कि पूछा कि अन्ना लकी हाजा, पूछ सकते हैं कि ये आपने कहां से लिया, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि इससे छिन जाए, इसको क्यों मिल गया है ना, बल्कि खुद अल्लाह के आगे हाथ उठाने चाहिए। अपने रब से जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना कि मेरा रब है मुझे भी देगा ना, तो और इस यकीन से करनी चाहिए कि अल्लाह उस दुआ को कबूल कर ले। फनादतुल मलाइकतु वह हुवा कायमु युसल्ली फिल मेहराब, जवाब में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे, यानी वो इबादत गुजार थे और वो जो है वो इबादत किया करते थे, और फरिश्तों ने क्या जवाब दिया, अन्नल्लाह युबशिरु कबी यहया, कि अल्लाह ताला आपको यहया की जो है वो खुशखबरी देते हैं। तो आप देख लें कि नमाज जो है इसमें जब अल्लाह ताला से इंसान राजो न्याज करता है, मनाजात करता है, दुआएं करता है, तो हकीकत में वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। नमाज में जो हरारत है, जो ईमान है, जो जिंदगी है, वो है जो इंसान का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ती है। और हमारी तमाम मुश्किलात और मसाइल में के वक्त हमें क्या ताकीद गई कि हम नमाज पढ़ा करें, है ना। वस्ताइनु में सब्री वसला, मुश्किलात में नमाज से जो है हम मदद लें। तो क्या पता चलता है कि जिंदगी की मुश्किलात को हल करने की कोई चीज चाबी है तो नमाज है। और अल्लाह ताला से नमाज में राजो नियाज करना, दुआएं और फरियादें करना, सजदों में और कयाम में और मुख्तलिफ तरीके से, तो जो ऐसे करता है तो जब नमाज पढ़कर उठता है तो अपनी झोली को भर कर उठता है। बहुत कुछ अल्लाह उसको जो है वो नवाज देता है। तो असल बात है कि ये मांगना चाहिए और अल्लाह फिर जो है वो छत फाड़ कर देता है। अब उनको भी अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दे दी और वो थी यहया अलैहिस्सलाम की। और यहया अलैहिस्सलाम जो है ये बहुत ही अल्लाह के पसंदीदा पैगम्बरों में से थे। उनकी पहली सिफत क्या बताई कि मुसद्दिकम बिकलिमति मिनल्लाह, कि वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाले होंगे और इससे मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। दूसरी खूबी क्या बताई, वह सईदन, कि वो जो है वो सरदार होंगे, यानी अपनी फितरत और दावत और मिशन के लिहाज से लीडर होंगे। उनके अंदर जो है वो ये हादी और मुर्शिद की जो है वो खूबी होगी कि वो लोगों की रहनुमाई करेंगे। और तीसरी उनकी खूबी क्या थी, वह हुसूरन, यानी इसका ये मतलब है कि वो अपने आप को कामिल तौर पर जब्त में रखने वाले होंगे। और वो लोग वो खास तौर पर जो है वो जो है वो जब्त नफ्स करने वाले होंगे। ये अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो खूबी बताई कि ऐसे नहीं होंगे कि गुनाहों की तरफ रगबत करें या औरतों की तरफ उनकी रगबत हो। और फिर सबसे बड़ी खूबी क्या होगी, वह नबी यम मिन सवालहीन, कि वो नबी होंगे और पाकबाज लोगों में से होंगे। और अब अगर आप गौर करें कि अगर खाली ये कह दिया जाता कि एक यहया की खबर दी जाती है जो कि नबी होगा, तो नबी के अंदर ये सारी सिफतें होती हैं कि पहले जो पैगंबर होते हैं उनकी भी वो तस्दीक करते हैं, और जैसे तौरात और इंजील में भी लिखा था कि और पैगंबर भी आने वाले हैं, है ना, आने वाले की भी वो बारे में बताते हैं, और वो लीडर भी होते हैं, और वो जो है वो जब्त नफ्स रखने वाले भी होते हैं। जब्त नफ्स यानी बर्दाश्त, सब्र, ये सारी खूबियां। तो वो अलग भी जिक्र किया और फिर साथ ये भी कह दिया, और फिर ये के सवालहीन में से। तो गोया के कमाल दर्जे के फजाइल और खूबियां उनके अंदर जो हैं वो पाई जाएंगी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहते हैं कि इन्हीं ने हजरत ईसा, यानी खुद भी ये लोग मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जो है जैसे इन्होंने उसकी तस्दीक की है, तो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम बड़े माने हुए जो हैं पैगंबरों में से हैं। इनकी किताबों में जो है तौरात इंजील में ये चीजें जो हैं वो मिलती हैं कि बड़े कमाल दर्जे के जो थे ये पैगंबर थे, कि माओ ने जिनको जना इनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, है ना। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम के बारे में खुद भी ऐसी बातें जो है वो मानते हैं। फिर अल्लाह ताला से वो ये बातें करते हैं और कहते जाते हैं, कौला रब्बी अन्ना यकून ली गुलामुन, कि मेरे यहाँ लड़का पैदा कैसे हो सकता है, वकद बलागनी अल किबारू, मैं तो बुढ़ापे को पहुंच चुका, यानी जो है मैं तो बूढ़ा हो चुका। और दूसरी बात क्या कही कि बमराती आखिर, और मेरी जो बीवी है वो बांझ है, मेरी बीवी जो है वो बूढ़ी है। तो अब आप देखें हमें कुरान में एक जगह ये भी मिलता है कि वह इस ताल रास, के मेरे बाल जो है वो भड़क उठे, बाल सफेद हो गए हैं, यानी ये बात भी मिलती है। तो अब यहाँ पे भी जो ही जो है वो खुशखबरी मिलती है तो साथ ही इनके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मेरे यहाँ ऐसा हो कैसे सकता है। क्योंकि मैं जो हूं है ही अब तो बुढ़ापे की दहलीज पे हूं, और आमतौर पर आप देखें कि 45-50 के बाद जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो विलादत के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। तो ये वही वाली बात है कि बिन मौसम के फल, तो बिन मौसम के फल जब उनके पास देखा तो बिन मौसम के फल औलाद का बुढ़ापे में अल्लाह इनको भी दे सकता था। अल्लाह ताला ने उसका क्या जवाब दिया कि काला कजालिकल्लाहु यफअलु मा यशा, अल्लाह ताला की तरफ से ये उनको जवाब मिला कि तेरे बुढ़ापे और तेरी बीवी के बांझपन के बावजूद अल्लाह तुझे जो है वो बेटा अता करेगा। अच्छा, यहां पर आप ऊपर अगर आप गौर करें कि आप ये भी देखेंगे कि फनादतुल मलाइका, फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, तो एक फरिश्ता भी तो उनको खबर दे सकता था ना, बहुत से फरिश्तों का जिक्र मिलता है ना। तो इसमें जो है बाज लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि ये भी होता है कि जैसे जिब्राइल अमीन जो है उनके पास खबर आती है और फिर खबर जो है आगे जाती है, तो बाज औकात जैसे इज्जत के लिए भी वाहिद की बजाय जमा का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे वही की एक किस्म क्या है कि फरिश्ते जो हैं वो मुखातिब होते हैं, मुकालमा करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि बहुत से फरिश्तों ने मिलकर, एक इतनी अच्छी खबर थी कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से फरिश्ते मिलकर उनके पास जो है ये खुशखबरी लाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है क्या फरमाया, क़ाला रब्बिज अल्ली आया, कहने लगे ए अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसी निशानी बता दे कि मुझे पता चल जाए कि मेरे यहाँ जो है अब मतलब इतना गैर मामूली वाकया पेश आने वाला है। एक तरफ मैं बूढ़ा, मेरी बीवी बांझ, पता कैसे चले कि जो है वो मुझे औलाद की नेमत से मैं नवाजा जाने वाला हूँ। अब वो अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त जो है वो करते हैं। वो थे चूंकि बहुत ही मुत्तकी और निहायत ही मोहताज बंदे, उनके दिल में एक खटक सी थी कि मुमकिन है बस ऐसी कोई आवाज आ गई हो। तो अब मजीद कहते हैं कि कोई जो है मुझे इसकी निशानी जो है बताई जाए, यानी ये वाकई मेरे नफ्स की तरफ से एक बात आई है या वाकई अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी जो है वो मुझे दी गई है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। क्या कहा, काला आयतु का अल्लाह तुकल्लिम मन्नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमजा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत नहीं कर सकोगे, कर ही नहीं सकोगे, या तुम करो नहीं या कर ही नहीं सकोगे। तो यानी गोया के अगर करोगे तो इशारे से करोगे, जबान से नहीं कर सकते। फिर करना क्या, वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इबकार, इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना। अब आप देखें कि एक खास मुद्दत तक इंसान पर ऐसी कैफियत हो जाए कि वो कुछ बात ना कर सके, तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको तस्बीह करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है। तो ये क्या है, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत का करिश्मा ही हो सकता है ना। जब इंसान दुनिया की कोई काम नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, तो उस पर अल्लाह अल्लाह करना भी तो कितना फिर मुश्किल है ना, शाक है। तो ये हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर गैर इख्तियारी कैफियत उन पर कायम कर दी गई, और ये कतई निशानी थी कि अब उनके यहां जो है वो बेटा पैदा होने वाला है, और ये मिन जानिब अल्लाह है। तो ये था कि बात नहीं कर सकते लेकिन तुम अल्लाह का जिक्र करना। इससे एक बात और पता चलती है, और वो क्या कि जब नेमतें मिलने लगे तो और ज्यादा अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई बयान करनी चाहिए। आम जिंदगी में भी नेमतों के मिलने पर, तनख्वाह के बढ़ने पर, बड़ा घर मिलने पर, औलाद के पैदा होने पर, कुरान के पारे में मुकम्मल होने पर, या ये कि कुरान हिफ्ज होने पर, या और कोई अल्लाह ताला किसी भी नेमत से दुनिया के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, सलाहियतों के लिहाज से, सेहत याब होने पर, मुख्तलिफ तरीके से क्या करना चाहिए कि फैज़ा फरख्ता, जब तुम फारिग हो जाओ तो क्या करो, वाइला रब्बी का फरगब, फिर और ज्यादा मेहनत मशक्कत करें और इबादत जो है वो करें। अच्छा, फिर इसके लिए क्या है, बिल अशी वल इबकार, इसका ये मतलब नहीं है कि बस सुबह और शाम करना है और दिन और रात को नहीं करना, ये एक अंदाज है बात करने का, मतलब ये हर वक्त फिर अल्लाह को याद करना। बिल गुदुवे वल असाल का लफ्ज हमें जो मिलता है तो मुराद क्या है कि हर वक्त जो है वो अल्लाह ताला को जो है वो याद करना, अल्लाह का जिक्र करना। और एक हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गूंगी जो लौंडी से उससे सवाल पूछा कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो उसने आसमान की तरफ इशारा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बांदी भी मुसलमान है। और अब आप देख लें कि यहाँ पे भी जो गूंगे हैं, डेफ हैं, जो भी मुख्तलिफ लोग हैं, उनके लिए भी अब ऐसी चीजें बन चुकी हैं, फोन भी और कंप्यूटर पे भी ऐसे साइन नजर आते हैं कि वो कैसे वो एजुकेशन हासिल करें, और उनके स्पेशल इदारे, और वो लोग भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान सीखते हैं, है ना। मेरी अपनी एक स्टूडेंट थी अमेरिका में, और उसकी बेटी जो थी वो नहीं बोल सकती थी, और बड़ी अच्छी हाईली एजुकेटेड, और साथ साथ उसको नमाज और कुरान और चीजें वो अपनी खास तरीके से, जो उनका है, जो जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट और जो चीजें उनसे वो सीखती थी। तो इसका ये मतलब है कि इंसान जो भी जी हिस है, जी शऊर है, अगर अल्लाह ने उसके हवास में से कुछ ले भी लिया है तो भी उसको अल्लाह की बंदगी और इबादत करनी है, और हर हाल में करनी है, और नियमतों के मिलने पर करनी है। बिल अशी वल इबकार, यानी सुबह शाम जो है वो अल्लाह की बंदगी और इबादत जो है वो करते रहना। अच्छा, यहाँ पर ये खास बात और है एक, और वो क्या है कि ईसाई ये समझते थे कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और आगाज किया गया हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से। तो जिस तरह यहिया अलैहिस्सलाम की विलादत भी तो मौजजे के तौर पर हुई ना, कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, और इनकी पैदाइश जो है यानी 6 महीना पहले उसी खानदान में हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजजे से हुई। तो अल्लाह ताला ईसाइयों को यह समझाना चाहता है कि अगर यहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तरह एक मौजजे से हो सकती है, तो मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को तुम गैर मामूली समझकर उनको इलाह क्यों कहते हो। समझ आई बात की? तो ये सारी कहानी जो सुनाई, तो ये सारी बात जो बताई, उसका ये मकसद है। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, और जब फरिश्तों ने हजरत मरियम से कहा, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहराकी व अस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, ये मरियम अल्लाह ने तुझे बरगुजीदा किया और पाकीजगी अता की, और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। तो ये आयत जो है, इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को तमाम दुनिया की औरतों पर जो है वो चुन लिया। क्या कहा कि इस्तफा की, और फिर इस्तफा की 2 दफा जो है ये मिलता है। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चलता है कि आपने फरमाया कि मर्दों में तो बहुत से बाकमाल लोग हो गुजरे हैं, मगर औरतों में कोई कमाल वाला नहीं हुआ, वजूद मरियम बिन इमरान और आसिया जौजा फिरौन के। ये बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह हमें जो है वो एक और हदीस से ये बात पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये बात भी कही कि दुनिया की सबसे बेहतर औरत मरियम बिन इमरान और खदीजा बिन खवेलद है, यानी खवेलद थी, रजी अल्लाह अन्हुमा। फिर इसी तरह जो है हम ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। फिर इसी तरह एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा को दूसरी औरतों पर वही हसी फजीलत हासिल है जो कि सरीद को दूसरे खानों पर। सरीद ऐसा खाना था जो गोश्त के में जो है वो पकाया जाता था, यानी गोश्त जिसके अंदर खास तौर पर नुमाया होता था। तो वो औरतें जिनको खास तौर पर फजीलत मिली, इसमें हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हुन्ना। तो एक हदीस में हमें बल्कि ये अल्फाज भी मिलते हैं कि आपने जो है कहा कि सैयदतु निसाई अहलिल जन्नती फातिमा। तो ये भी यानी ये सारी औरतें जो हैं इनको फजीलत मिली। तो इससे इससे हमें क्या बात पता चलती है, यानी गो के यानी मर्द जो हैं अल्लाह ताला ने उनको बड़ा कमाल दिया है, और अंबिया सारे के सारे मर्दों में से होकर गुजरे हैं, लेकिन औरतों में से भी अल्लाह ताला ने बाज औरतों को जो है वो चुन लिया, और उनमें हमें इनका नाम मिलता है। और आप देख लें कि ये जो औरतें जिनका भी नाम लिया गया है, और इसमें यानी इनकी सीरत क्या थी, इनका क्या जिंदगी क्या थी, इनकी कुर्बानियां क्या थी, उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए, मताला करना चाहिए। जैसे आप देखें कि हज की दास्तान कहाँ से शुरू होती है, बीबी हाजरा से ही होती है ना, सहरा में और रेगिस्तान में एक छोटे से नन्हे से बच्चे के साथ जो थी वो थी, और वो दौड़ी कि उनके अमल को ता कयामत अल्लाह ने ऐसी कबूलियत बख्शी कि मर्दों का भी हज और उमरा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो सही ना करें, है ना। तो नेकी के कामों में औरत कभी पीछे नहीं रही, और अल्लाह ने उनको भी बड़ा मकाम दिया है, उनके अमलों को भी बड़ी कबूलियत बख्शी है। फिर आप देखें ये बीबी मरियम की वालदा की बात को कैसी कबूलियत बख्शी, है ना, कि उसको चुन लिया, उनकी बेटी को चुन लिया। तो जरूरी है कि हम दिल और नीयत के साथ, इखलास के साथ जो है ना दुआएं किया करें अपने लिए, अपनी औलादों के लिए। फिर आप हजरत खदीजा रजी अल्लाह के बारे में हमें हदीस से पता चलता है कि एक दफा जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो औरत अभी बर्तन लेकर आ रही है उसके बर्तन में कुछ है, उनको अल्लाह ताला और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सलाम भेज रहे हैं, यानी सलाम सलामती है उनके लिए। क्यों? बहुत नेक थी, सबसे पहले औरतों में इस्लाम लाई हजरत खदीजा रजी अल्लाह ना, और सारी दौलत रसूल अल्लाह पर जो है वो वक्फ कर दी और खर्च कर दी। कितनी तसल्ली दी, हर बात में हर मौके पर। उनकी जिंदगी का भी मताला करना चाहिए। फिर जो है बीबी आसिया के बारे में कुरान में आप पढ़ेंगे आगे, और जो उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला जन्नत में अपने पास मेरे लिए महल बनाना, वो कितनी नेक औरत थी। और फिरौन महलात का मालिक, हीरे जवाहरात का मालिक, लेकिन फिरौन के महल में उसका दिल नहीं लगता था, अल्लाह ताला से जन्नत में महल की दुआ कर रही है। फिर इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा देखें कि कैसे दीन सीखा, और अभी बहुत छोटी उम्र थी आपकी जब शादी हुई, और अभी जवान थी जब दुनिया से प्यारे रसूल चले गए, और उनके जरिए दीन बहुत से सहाबा ने जो है वो सीखा और आगे तक गया। फिर इसी तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, आपने कितनी मेहनत और मशक्कत की जिंदगी बसर की। और ये देखें, ये तस्कारे सहाबियात तालिब हाशमी की बहुत खूबसूरत किताब है, ये आपके लिए मंगवाई भी हुई है, आप इसमें से जो है वो जरूर मुताला करें सहाबियात का, और खास तौर पर उन सहाबियात का जिनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उनको चुन लिया गया है। और फिर क्या कहा, या मरियम उकनुती ले रब्बी की वसजुदी वरकई मा राकईन, के ऐ मरियम जो है वो फरमा बरदारी कर अपने रब की, और सजदा कर और रुकू कर रुकू करने वालों के साथ। तो यानी तुझे छान तो लिया है, तुझे चुन तो लिया है, तुझे पाकीजगी अता की है, यानी खास तरबियत के मौके। और ऊपर जो है एक ये बात भी थी कि तुझे जो है वो चुन लिया है, लेकिन साथ तत्हीर भी। तत्हीर का मतलब क्या था कि यानी आम इस्तफा नहीं है, आम चुनना नहीं है, बल्कि क्या है कि खास तौर पर तुझे जो है वो खास, यानी तुम्हारे अंदर जितनी भी बातनी जो कमी है उससे भी तुझे पाक कर दिया गया है ना। पाकी जिस्मानी भी पाकी है, बातनी भी पाकी है। और तत्हीर के साथ अला का जो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, दुनिया की औरतों पर तुझे जो है वो मुंतखिब किया गया, तरजीह दी गई है, फजीलत दी गई है, अला निसा इल आलमीन। तो अब ये ऐसा शरफ है, ये ऐसा ऐसी फजीलत है जो आम नहीं है। तो अब इस इमानत की तैयारी करो, जो चुन लिया यानी मुमताज बनी हो तो इम्तियाज हासिल करो। जैसे उम्मते मुस्लिमा उम्मते वस्त है, मुमताज बनाई गई है, तो इसको दुनिया की रविश से हटकर चलना चाहिए। जब किसी को खास कोई चीज जिम्मेदारी मिले तो उसको उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। तो तुम इस जिम्मेदारी की तैयारी करो, और उस तैयारी की सबसे पहले काम क्या है कि तुम जो है पूरी नियाजमंदी के साथ, पूरी आजजी और इंकसारी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाओ। दूसरी बात क्या है कि सजदा और रुकू। हालांकि नमाज भी कुनूत है और कुनूत भी नमाज है, दोनों चीजें साथ साथ हैं, लेकिन यहां पर खास तौर पर तवज्जो दिलाई गई है कि नमाज के अंदर इन्हमाक हो, बाकायदगी से हो, शौक के साथ हो, इस्तराब हो, बेकरारी हो, सारी चीजें, और डूब कर पड़ी जाए। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, तरा हम रुक का अन सुजदा, कि नेक लोग जो है तुम उनको रुकू और सज्दे करते हुए देखोगे, उसमें मसरूफ नजर आएंगे। तो नमाज की तस्वीर की जो सआदत है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो मिली जबकि वो खलवत में थी, और कहा गया वरकई मर रहा कि रुकू करने वालों के साथ आप रुकू कीजिए, यानी खलवत में भी नमाजों के साथ साथ जमात की नमाजों की बरकत। और वो हैकले सुलेमानी था जहां पे जो है वो इकट्ठी होके भी पढ़ी जाती होंगी, तो साथ ही उनका वो हुजरा था, तो ये भी हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि औरत जो है उसके लिए भी ये बात तो है कि वो जो है वो नमाज बा जमात जो है वो पढ़ सकती है। औरतों का घर में नमाज पढ़ना जो है, और बल्कि घर की अंदर की कोठरी में नमाज पढ़ना मस्जिद में आकर बा जमात नमाज पढ़ने से अफजल है, बेहतर है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की सबसे बेहतर मस्जिद इनके घर के अंदर की कोठरी है। मुस्नद अहमद ने इसको रवायत किया है। लेकिन अगर वो मस्जिद में आकर जमात में शरीक होना चाहे तो इससे इसकी भी इजाजत है, जबकि फितने का कोई खतरा ना हो, और उसको खुशबू लगा कर नहीं आना चाहिए मस्जिद में, ब्यूटीफाई अपने आप को करके। आपने फरमाया कि वो खुशबू लगाकर और बनाव सिंगार करके ना आया करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमसे तुम्हारी औरतें रात को मस्जिद में आने की इजाजत तलब करें तो उन्हें दे दिया करो। बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है। इसी तरह एक मौके पर आपने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से मना ना करो अगरचे इनके घर इनके लिए बेहतर हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मना ना करो, लेकिन उन्हें चाहिए कि सादगी के साथ आए। तो इससे क्या पता चलता है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत है और इसका भी अजर है, और अगर औरतें आना चाहें और वो सलीके और तरीके से आए तो मर्दों को उनसे मना नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो एक और हदीस है कि औरत की इमामत के बारे में। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से जो है रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत किसी मर्द की इमामत ना करवाए। अलबत्ता औरत का औरतों की इमामत कराना जायज है। हजरत उम्मे वरका रजी अल्लाह अनहा बिन नौफल से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिलने के लिए इनके घर तशरीफ लाते थे। आपने इनके लिए एक मुअज्जिन भी मुकर्रर कर रखा था जो इनके लिए अजान देता था और वो अपने घर वालों की इमामत कराती थी। ये अबू दाऊद की रवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि औरत औरतों की इमामत कराएगी और इनके दरमियान खड़ी होगी, उसी सफ में खड़ी होकर, आगे जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। सही है। तो नमाज बा जमात भी औरत पढ़ सकती है और उसके साथ ही जो है उसको जो है वो चाहे तो औरतों की इमामत भी करवा सकती है, लेकिन औरतों की सफ में ही खड़ी होगी। लेकिन आज एक और फितना खड़ा हो गया कि औरतें मर्दों की इमामत करवाने के लिए खड़ी हो गई, और ये जो है ये जायज नहीं है। और ये पिछले दिनों आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा, टीवी मीडिया ने इसको खूब खबर दी, अमेरिका में जो है वो वहां पे हुआ मैनहट्टन में। अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूही ही इलैक, ये गैब की खबरें हैं जो हमने तेरी तरफ वही की हैं। वमा कुंता लदैहिम इज़ युल्कून अक्लामहुम अय्युहुम यक्फुलु मरियम, और आप उस वक्त जो थे वो मौजूद नहीं थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपने अपने कलम जो थे वो फेंक रहे थे। कि एक तो इससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इलम नहीं था, तभी तो उनको ये खबरें बताई गई। दूसरी बात जो पता चलती है वो क्या है कि हजरत मरियम की वालदा ने चूंकि उनको हैकल की नजर कर दिया था और वो एक लड़की थी और एक नाजुक मसला था, तो जितने भी हैकल के सरपरस्त और मजावर थे वो कुर्रा डाल रहे थे, और कहते हैं कि जिससे तुरात लिखते थे ना, तुरात वाले कलम, ये फैसला हुआ कि तुरात वाले कलम पानी में डाले जाए, जिसका कलम पानी के बहाव पे रुक जाए आगे ना बढ़े तो उसको हजरत मरियम जो है वो दे दी जाएगी, उनके स्पुर कर दी जाएंगी, और वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम था और उनके वो स्पुर जो है वो कर दी गई। तो यानी कुर्रा डाला जा सकता है, कुर्रा इस्लाम में जायज है कि किसी एक चीज पर सबके हुकूक बराबर हो तो फिर कुर्रे से फैसला किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा कुंता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और तुम उस वक्त हाजिर नहीं थे जबकि वो झगड़ा कर रहे थे। तो उनका झगड़ा सोने चांदी पर, डॉलर पर, घर पर, पैसे पर, कपड़ों पर नहीं था, बल्कि उनका झगड़ा इस चीज पर था कि ये एक नेक बच्ची जो है इसकी तरबियत कौन करे और इसकी कफालत कौन करे। हम दुनिया पे झगड़ा करते हैं और वो नेकी के कामों पर झगड़ा जो थे वो कर रहे थे। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।